ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगी। श्रीमती मुर्मू शुक्रवार को सिकंदराबाद में रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू राष्ट्रपति निलयम में राज्य के प्रमुख हस्तियों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम की मेजबानी करेंगी। वर्ष 2022 में पद संभालने के बाद ये राष्ट्रपति की तीसरी हैदराबाद की यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजस्थान में 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि परियोजनाओं से रोजगार के अनेक अवसर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार देश में सुशासन का प्रतीक बन रही है। श्री मोदी राज्य में भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक समारोह में शामिल हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज होने वाली भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में शामिल होने के लिए पेचिंग पहुंच गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण 4 साल से अधिक समय से रुके हुए द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। श्री डोभाल अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधियों की 23वें दौर की वार्ता करेंगे। इस वार्ता में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के गश्त के 21 अक्टूबर के समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का मूलभूत स्रोत है। उन्होंने कहा कि संविधान देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है और बिना किसी रक्तपात के सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित करता है। राज्यसभा में कल भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप का करारा जवाब दिया कि संविधान की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 16 वर्षों के शासन में केवल 22 बार संविधान संशोधन किए गए, जबकि कांग्रेस के 55 साल के शासन में 77 संशोधन किए गए। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने आरोप लगाया कि 1% आबादी देश की 40% संपत्ति को नियंत्रित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर मौन है। डीएमके पार्टी के पी विल्सन ने आरोप लगाया कि सरकार संसद को कमजोर कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश के संवैधानिक और सभ्यता के मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी 2025 से श्रीलंका की यात्रा के लिए मुफ्त वीजा पाने वाले 39 देशों में भारत के नागरिक भी शामिल होंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हिरात ने कल नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की। मध्यस्थतों से मिलने के लिए इसराइल के प्रतिनिधिमंडल के दोहा पहुंचने के बाद हमास ने कहा है कि गजा में संघर्ष विराम और बंधक कैदियों की अदला बदली के उद्देश्य से कल कतर में हुई बातचीत गंभीर और सकारात्मक रही। एक बयान में फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि हमास ये पुष्टि करता है कि अगर नई शर्तें नहीं थोपी जाती हैं तो कतर और मिश्र के तत्वाधान में दोहा में हो रही सकारात्मक चर्चाओं के बाद युद्ध विराम के लिए समझौते पर पहुंचना और कैदियों की अदला बदली करना संभव है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कैट्स ने भी संकेत दिया कि इसराइल के वार्ताकार नवंबर 2023 के संघर्ष विराम के बाद से गजा में बंधकों की रिहाई के समझौते के इतने करीब कभी नहीं पहुंचे थे। पंजाब में 149वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन 27 से 29 दिसंबर तक जालंधर के श्रीदेवी तालाब मंदिर परिसर में होगा। दुनिया में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का ये प्रतिष्ठित और सबसे पुराना समारोह इस वर्ष दिवंगत उस्ताद जाकिर हुसैन को समर्पित होगा। 3 दिवसीय संगीत सम्मेलन से पहले 23 से 26 दिसंबर तक संगीत प्रतियोगिता हरिवल्लभ संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।